नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्वीकृति दी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अगस्त महीने में प्रतिदिन 348 टन ठोस अपशिष्ट उठाया है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर, जल स्तर आज दोपहर तक 205.24 मीटर पर पहुंचा। राजधानी के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने स्कूल पहुंचकर पुलिस की सहायता की और नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी कल आजादी के रंग नामक एक जीवंत कठपुतली प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में 8 अगस्त को मॉनसून सत्र के दौरान यह विधेयक पारित किया गया था।
इस कानून के तहत अब किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। विवादित शुल्क के लिए छात्रों के विरुद्ध दंडनात्मक कार्रवाई पर रोक लग गई है। वहीं निर्धारित फीस 3 वर्षों तक स्थायी रहेगी, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ का असर कम होने का अनुमान है। प्रत्येक स्कूल में एक फीस समिति के गठन पर भी बल दिया गया है, जिसमें प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक, महिलाएं और वंचित वर्ग के लोग शामिल होंगे। इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह कानून अब शहर में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाएगा और स्कूलों की फीस निर्धारण में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली सरकार की शिक्षा नीतियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते अभिभावकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि फीस निर्धारण में अभिभावकों की भूमिका अब बढ़ जाएगी, जो पहले बेहद सीमित थी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक जीवन के विविध दायित्वों में श्री राधाकृष्णन का समर्पण सदैव वंचित और उपेक्षित वर्गों के उत्थान हेतु रहा है। उनके राजनीतिक और सामाजिक सफर का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में उनके जमीनी कार्य और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में श्री राधाकृष्णन ने समाज और राज्य दोनों को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक विषयों पर उनका गहन अनुभव राज्यसभा में न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि उन्हें नई गरिमा और दिशा भी देगा। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरेन रिजिजू, के राम मोहन नायडू और भूपेंद्र यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े तथा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उपस्थित थे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान 204.5 मीटर से ऊपर बढ़कर आज दोपहर 1 बजे तक 205.24 मीटर पर पहुंच गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जलस्तर में यह वृद्धि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में यमुना नदी और उससे सटे क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन और तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। मुख्यमंत्री का दौरा असीता घाट से प्रारंभ होकर यमुना छठ घाट, पूर्वी जिला अधिकारी कार्यालय, 12 नंबर रेगुलेटर और कंट्रोल रूम तक चला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की मात्रा और ऊपरी यमुना क्षेत्र में भारी वर्षा को देखते हुए केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए परामर्श में दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 206 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राजधानी अभी भी पूरी तरह से सेफ जोन में नहीं है। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आशा जताई कि सरकार तत्काल सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन, नालों की सफाई और आपदा राहत की तैयारियां केवल फाइलों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में दिखनी चाहिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के तहत अगस्त में प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट 348 टन उठाया है। नगर पालिका के अनुसार यह पिछले महीने के मुकाबले 7.08% की वृद्धि दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
स्वतंत्रता दिवस से पहले शुरू किए गए इस पहल के अंतर्गत NDMC क्षेत्र में 15 अगस्त तक 413 स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 23 विभागों के कार्यालय और कार्यस्थल स्वच्छता अभियान से लेकर 138 संस्थानों में स्कूल स्तरीय स्वच्छता गतिविधियां, 12 बाजारों में बाजार संघों द्वारा संचालित पहल, 15 झुग्गी झोपड़ियों के क्लस्टर क्षेत्रों में श्रमदान और 62 बागवानी स्थलों पर वृक्षारोपण गतिविधियां शामिल हैं। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सेल्फी संग संकल्प अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसमें 11,000 से अधिक हस्ताक्षर और 13,800 से अधिक नागरिकों द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई। NDMC ने 10 RWA, 46 अस्पतालों और औषधालयों और 6 धार्मिक स्थानों को भी इसमें शामिल किया। वहीं 5,000 NDMC स्कूली छात्रों के साथ एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। नगर पालिका ने बताया है कि इन अभियानों से नागरिकों के बीच जिम्मेदारी का भाव बढ़ा और नई दिल्ली क्षेत्र के विविध सामुदायिक स्थानों तक स्वच्छता का संदेश गया। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के कई स्कूलों को आज बम की धमकी मिली। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें और स्कूलों को लगभग 32 कॉल और धमकी भरे ईमेल मिले। धमकी मिलने पर अग्निशमन विभाग ने तुरंत स्कूल पहुंचकर वहां मौजूद पुलिस की सहायता की। वहीं कई स्कूलों ने आज छुट्टी कर दी और माता पिताओं से अपने बच्चों को घर ले जाने का अनुरोध किया। दिल्ली के डिप्टी चीफ अग्निशमन अधिकारी AK मलिक ने बताया कि यह सभी धमकियां झूठी थी। उन्होंने बताया कि ये सभी कॉल सुबह 7:24 से आने लगे थे।
जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि दिल्ली पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें, तो उनके सपोर्ट के लिए हम लोग जाते हैं, तो वहां पर ढूंढते हैं कि वहां पर कोई बम वगैरह तो नहीं, उनका बम डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह आता है, और अगर उसके बाद हमारी जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है जो भी पड़ती है वो करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। ये लगातार आ रही है, सुबह 7:24 से ये शुरू हुई थी और अभी तक सभी हॉक्स निकले हैं।
सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने अपने स्थायी सुरक्षा जवानों को झड़ोदा कला स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में 1 महीने का विशेष पुलिस प्रशिक्षण दिलवाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 6 अगस्त से शुरू हुई पहले ट्रेनिंग बैच में 30 सुरक्षा जवान शामिल थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया।
इस विशेष प्रशिक्षण के तहत प्रतिभागियों को सुरक्षा कौशल, निगरानी तकनीक, भीड़ नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा और निकासी प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन तथा चिकित्सा आपातकालीन सहायता में दक्षता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आतंकी खतरे के बारे में जागरूकता, अस्पताल विशिष्ट प्रोटोकॉल, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा, VVIP गतिविधियों को संभालना, लैंगिक संवेदनशीलता, सॉफ्ट स्किल्स, घटना रिपोर्ट लेखन और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी विशेष महत्व दिया गया, ताकि एम्स के सुरक्षा जवान हर परिस्थिति में सक्षम बने रहें। एम्स ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाना है, जिससे अस्पताल आने वाले डॉक्टरों, रोगियों, आगंतुकों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा और भी बेहतर हो सके। संस्थान ने बताया कि इससे एम्स सुरक्षा जवानों की कार्यक्षमता, अनुशासन आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था में समझ को और भी बेहतर बनाने में मदद मिली है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श के साथ नीतिका।
दिल्ली के समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के उपाध्यक्ष के साथ INA स्थित विकास सदन में शहर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बैठक की। श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जनहित, बुनियादी ढांचे और विकास के प्रमुख मामलों पर चर्चा की गई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज अंबेडकर विश्वविद्यालय के समग्र प्रबंधन और कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विश्वविद्यालय की कुलपति अनु सिंह भी उपस्थित रहीं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि यदि उपयुक्त नीतियां, वैश्विक साझेदारियां और नवाचार को बढ़ावा मिले तो देश के निर्यात में एमएसएमई का योगदान 40% से बढ़कर 70% तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह बात आज एमएसएमई ग्लोबल समिट 2025 में अपने संबोधन के दौरान कही। इस दौरान श्री गुप्ता ने लोकल टू ग्लोबल के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की आर्थिक क्रांति का घोषणा पत्र है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आज आरोप लगाया कि राजधानी में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को संबोधित अपने एक पत्र में आतिशी ने कहा कि कालकाजी, बदरपुर और साउथ सेंट्रल दिल्ली के कई क्षेत्रों में नलों में सूखे की परेशानी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की दिल्ली सरकार इस समस्या को हल करने में अब तक नाकाम साबित हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में घटकर 5.2% रह गई है। जून में यह दर 5.6% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मासिक श्रम बल और बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की बेरोजगारी दर 5.1% रही जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.3% थी। राजधानी के राजा गार्डन के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने के कारण आज 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में शोरूम का एक अन्य कर्मचारी और दमकल विभाग का एक कर्मचारी भी घायल है जिनका इलाज जारी है। दोपहर करीब 3:08 पर आग की खबर मिलने पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। मौके पर मोतीनगर के एसएचओ भी उपस्थित थे। मामले में जांच अभी जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समूह के सदस्यों से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, उनका अमूल्य ज्ञान और उनके रहन सहन को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने जनजातीय समुदायों के लिए समर्थन का आह्वान करते हुए कहा कि पूरे आदर और सम्मान के साथ जनजातीय समुदाय देश की विकास यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एक व्यापक स्वास्थ्य और आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क तैयार किया है। रावी और ब्यास नदियों के जलस्तर में वृद्धि ने होशियारपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिलका और फिरोजपुर जिले के कुछ इलाकों को प्रभावित किया है जिससे ग्रामीणों को आश्रय गृहों में जाना पड़ा है। सभी जिलों में 2000 से अधिक अस्पताल के बिस्तर तैयार रखने के साथ राज्य ने किसी भी संभावित महामारी से निपटने के लिए एक मजबूत बफर तैयार किया है। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज दिन भर धूप खिली रही और मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री कम 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्वीकृति दी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अगस्त महीने में प्रतिदिन 348 टन ठोस अपशिष्ट उठाया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, जलस्तर आज दोपहर तक 205.24 मीटर पर पहुंचा। राजधानी के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने स्कूल पहुंचकर पुलिस की सहायता की और नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी कल आजादी के रंग नामक एक जीवंत कठपुतली प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।